हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा का कमरा। विहा सोफे पर बैठी वेदांत को घूर रही थी, क्योंकि आज सुबह से वो उसे कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहा था, जिसका रीजन विहा को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने बगल में बैठे वेदांत के करीब जाते हुए जल्दी से उसकी कॉलर पकड़कर कहा, बताइए मिस्टर हस्बैंड, आप मुझे क्या छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह किया है आपने जिस पर पर्दा डालने के लिए आप मुझे किसी बच्चों की तरह पैम्पर कर रहे हैं? जो कि मैं चाहती हूँ कि आप करें, लेकिन उससे पहले मुझे इसका रीजन चाहिए। ऐसा क्या हो गया है जो आप एकदम से जलते ज्वालामुखी से बर्फ की सीलिंग बन गए? अगर आप ये बोलने वाले हैं कि मेरी दीदी वापस नहीं आएंगे तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी, क्योंकि इसके लिए तो मुझे पैम्पर करने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं उनके बिना इस घर में भी नहीं रह सकती हूँ। वेदांत ने घबराहट से सूखते अपने होठों पर जीभ फेर कर कहा, मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी दीदी आने वाली है, मैंने उनसे कॉल पर बात की थी। वो दोनों निकल चुके हैं घर से यहाँ आने के लिए, बस थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तुम खाना खाओ, अपने सर पर गुस्सा सवार कर रही हो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना बेबी, बस इसलिए। विहा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे बुद्धू समझा है। मुझे पता है मेरा पति कैसा है। वो मुझे बिना बात के तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देता है। चाहे मैं रो रो कर पागल ही क्यों ना हो जाऊं, वो बस बोलता रहेगा, टोमैटो ऐसा नहीं है, टोमैटो वैसा नहीं है, टोमैटो तुम गलत समझ रही हो। लेकिन नहीं, आज आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप बस जल्दी से बोल रहे हो, रियली सॉरी बेबी, मैं अभी करता हूँ। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आता हूँ। पहले आपने ऐसा नहीं किया था, आखिरी लाइन विहा ने लगभग चिल्लाते हुए कही थी। तब तक निवेदिता भी उसे कमरे में आ चुकी थी। निवेदिता के आते ही विहा ने वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और फिर मुंह फुलाकर उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। निवेदिता जल्दी से उन दोनों के बीच में बैठते हुए बोली, क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? क्या हुआ है? चलो उसे छोड़ो। उसने फिर जल्दी से विहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हारी दीदी आने वाली है और तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स के लिए भी मना कर दिया है। मैंने बात की है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम अपना गुस्सा छोड़ दो। निवेदिता की बात सुनकर विहा ने खुश होते हुए उसके गले लगाकर कहा, हाँ सासुमा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? वो तो बस मैं गुस्से में ऐसे ही बकवास कर देता हूँ, आप उसे सीरियस मत लिया करो। अगर मेरी दीदी रहेंगी तो मैं भी यहीं रहूंगी, और आई बात मेरे गुस्से की तो मैं किसी और वजह से गुस्सा हूँ, और वो वजह मुझे जाननी है जिसकी वजह से मुझे आपका बेटा पैम्पर कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर निवेदिता में भी कन्फ्यूजन में वेदांत की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वेदांत वहाँ से उठा और फिर उन दोनों के सामने फर्श पर बैठ गया। उसे ये करता देखकर विहा ने जल्दी से कहा, अरे आपको ऐसे बैठकर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास भी बैठ सकते हैं। वेदांत ने ना में गर्दन हिलाई और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब निवेदिता के सामने वेदांत को ऐसा करता देखकर विहा शर्म से लाल हो गई थी, जिसे देखकर वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, टोमैटो, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा हाथ ही पड़ा है। मैं और फिर उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ बताना है आप दोनों को, कल रात को विहा बेहोश हो गई थी। निवेदिता ने जल्दी से कहा, मैं तो तुम्हें कहती रहती हूँ ये कितनी कमजोर तो है, और तुम इसे रुला रुलाकर और कमजोर कर देते हो। पहले ही अनाई से बात करवा देनी चाहिए थी तुम्हें इसके। निवेदिता का बढ़ता गुस्सा देखकर वेदांत ने जल्दी से कहा, शांत हो जाओ माताश्री, पहले मेरी बात तो सुनो। उसके बाद मैं डॉक्टर को बुलाया था इसे चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा है कि इस 15 दिन की प्रेगनेंसी है और मुझे इसका बहुत सारा ख्याल रखना है ताकि ये स्ट्रेस ना ले। उसकी ये बात सुनकर निवेदिता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या प्रेग्नेंट? इतना बोलकर उन्होंने जल्दी से विहा की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए हों। वो बिना पलक झपकाए वेदांत की तरफ देख रही थी। वेदांत उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी बेचैनी हुई छुपाते हुए कहा, टोमैटो, तुम्हें सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम मामा बनने वाली हो और मैं पापा, बस इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैम्पर कर रहा हूँ ताकि तुम स्ट्रेस ना लो। लेकिन यहाँ तो तुम हर बात का स्ट्रेस ले लेती हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? विहा वैसे ही शांत बैठी थी, उसके होठ हल्के से खुले हुए थे और पलके बिल्कुल झपक नहीं रही थी। वेदांत ने थोड़ा डरते हुए कहा, टोमैटो, कुछ तो बोलो, मुझे डर लग रहा है। तुम खुश तो हो ना? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर ली है? निवेदिता ने भी जल्दी से कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना ये कितनी छोटी है। विहा ने जल्दी से वेदांत से अपने दोनों हाथ छुड़ा लिए और फिर अपनी उंगलियों को आपस में होताते हुए धीरे से निवेदिता की तरफ देखा। निवेदिता ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने वापस अपनी नजरें झुका लीं। उसका ये रिएक्शन देखकर निवेदिता और वेदांत दोनों बेचैन हो गए थे। विहा ने जल्दी से कहा, सासू माँ, सारी गलती वेदांत जी की है, मैंने तो सामने से कुछ नहीं किया था, आप मुझे बेशर्म मत बोलना। इतना बोलकर उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और एक झटके से उस हाथ को वापस हटा लिया, जैसे उसे अपना पेट छूने से करंट लगा हो। उसे ऐसा करता देख वेदांत ने जल्दी से कहा, क्या हुआ टोमैटो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? विहा ने जल्दी से कहा, आप चुप रहिए, एकदम एक तो बेशर्मों की तरह मेरे पेट में बच्चा दे दिया और अब मुझे सवाल जवाब कर रहे हैं। विहा की आवाज़ बहुत घबराई हुई थी, जैसे वो इस सच्चाई को अपनाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। निवेदिता ने उन दोनों को ही ऐसे बच्चों वाली हरकतें करते देखकर अपना माथा पकड़ लिया। वेदांत ने जल्दी से कहा, नहीं टमाटो, इसमें कुछ गलत नहीं है, और तुम ना ज्यादा घबराओ मत, हो सकता है तुम्हारे घबराने से भी बच्चे को चोट लग जाए। विहा ने जल्दी से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, इसीलिए तो मैं पेट पर हाथ नहीं रखा, अगर उसे लग गई तो आप प्लीज उसका ख्याल रखना, मुझे डर लग रहा है। वेदांत ने जल्दी से कहा, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। निवेदिता ने जल्दी से कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, 15 दिन में तो बच्चे का फॉर्म भी नहीं होता है, लगता है तुम दोनों स्कूल नहीं गए हो, बेवकूफ कहीं के। और फिर उसने विहा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम परेशान मत हो बच्चा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत खुश होने वाली बात है ना कि तुम मामा बनने वाली हो। विहा ने जल्दी से खुश होते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बोलकर वो जल्दी से निवेदिता के गले लग गई। निवेदिता ने प्यार से उसके सर को सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए वेदांत की तरफ देखा, जो खुद परेशान सा अब भी फर्श पर बैठा था। निवेदिता ने आगे बढ़कर वेदांत के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें दो दो बच्चों को संभालना है। ये सुनकर विहा ने जल्दी से कहा, क्या डॉक्टर ने ये कहा था कि मुझे ट्विन बेबी होने वाले हैं? इतना बोलते ही वो सोफे से लगभग उछलते हुए खड़ी हो गई। निवेदिता ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया।